ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के बेहद कर्म भूमि, तपस्या भूमि, दादियों की भूमि, मम्मा की भूमि, ड्रामा के प्लान अनुसार हम सभी मणिनगर सबसून 2 साल से पेंडिंग था, वो गिफ्ट के रूप में हमें इस बार प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वप्रथम बाबा का बहुत बहुत तहे दिल से आभार के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले अप्लाई किया था तो वो दिन आज आया। उसके लिए हमारी समस्त दादियाँ, मम्मा और हमारी मीठी दीदी जिन्होंने हमेशा सेवा और तपस्या में बहुत ही दीदी प्रेशर देते थे, तो दीदी और सभी काम स्वागत करते हैं और सूक्ष्म में इन 4-5 दिन की उपस्थिति हम महसूस करेंगे। साथ ही साथ मुन्नी दीदी जिन्होंने बड़े प्यार से ये जो सीजन प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका भी दीदी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और खास नेहा दीदी तो नीचे है लेकिन वो हमारे बीच परसों होगी, उनका भी हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और खास आज के हमारी इस पट्टी के निमित्त हमारे कोऑर्डिनेटर सेवा में आए इशिता बहन, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे तो हम मिलते ही रहते हैं हर प्रोग्राम में, लेकिन इस बार का रूप डिफरेंट है। हर पॉइंट पर हमें गाइडेंस मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और हमें हर बातों से सहयोग मिलेगा। इसलिए जोरदार इशिता बहन का हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी मणिनगर की मणियां, मधुबन किसको अच्छा न लगे, हाँ पांडव भवन का नाम आते ही सभी का हाथ और सभी के चेहरे और मन खिलखिला उठते हैं कि बाबा के इस भूमि पर हम 3-4 दिन रहे और तपस्या करें, बाबा मम्मा का प्यार प्राप्त करें और ऐसी गिफ्ट हम सभी प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप सभी दीदियों का, सभी दीदी और जो भी आए हुए सभी भाई, सभी का तहे दिल से नेहा दीदी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत। और जो नहीं आ पाए हैं कोई भी कारणवश, हमारी बहनें, उन बहनों को भी सूक्ष्म यहाँ उपस्थित रखेंगे और वो भी हम सभी के साथ पट्टी करेंगे, तपस्या करें, वो आनंद उन तक पहुंचे। तो उन बहनों का भी मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारी पट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य सुनाने के लिए हमारी मीठी इशिता बहन हम सभी को अवगत कराएगी। मैं संक्षिप्त में आपका परिचय दूंगी। किशोर अवस्था में आपको बाबा का परिचय प्राप्त हुआ, सपरिवार आप बाबा के ज्ञान में चले और बड़ा ही क्रांतिकारी संकल्प के साथ आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित की। आप वर्तमान समय पर नवरंगपुरा सेवा केंद्र और बाबा का जो बहुत ही खुशहाल स्थान है खुश राजी, आप उसकी नियमित संचालिका हैं, बहुत प्यार से आप सेवाएं देती हैं। साथ साथ मधुबन यज्ञ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी आप अपनी सेवाएं देती हैं। तो ऐसी अथक सेवाधारी और बहुत ही मीठे प्यार से हम सबकी सखी, तो इसी तरह से मैं निवेदन करती हूँ कि हम सभी को पट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य हम सभी के बीच में रखें। ओम शांति, ओम शांति।
Thank you.
बहुत ही था, लेकिन मुझे कहा कि आपको तो पता ही है, तो जो पता था वो मैंने बताया, तो थोड़ा आप भी बता देना। और कौन सा डिवाइन
दिव्य नगरी,
दिव्य नगरी का भी प्रोजेक्ट कई सालों तक नवरंगपुरा में चला और उससे बहुत बहुत सेवाएं हुई। तो ऐसे विभिन्न प्रोजेक्ट, नवीनता भरे प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी के साथ आप सेवाएं करते रहते हैं और यज्ञ को, वहाँ के स्थानों को लाभान्वित करते रहते हैं। इशिताबेन, ओम शांति।
हमारी मीठी खास सखी है ना नंदा बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स, जो इतना सम्मान किया। और आप सब हमारी बड़ी दीदियों को, हमारी छोटी बहनों को बहुत ही स्नेहपूर्ण, आदरपूर्ण ओम शांति। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके बाजू में जो बैठे हैं उसको बहुत प्यार भरी रूहानी दृष्टि देते हुए ओम शांति करेंगे। कई बार पूरी बच्ची जिसके बाजू में बैठते हैं उनको ही ओम शांति करना भूल जाते हैं। आज तो हाँ, जिन बहनों को आगे बैठना हो वो आगे आकर बैठ सकते हैं, आगे सोफे भी खाली है वहां भी आकर बैठ सकते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तब पता चला कि बट्टी किसकी है, क्योंकि आकर पूछा कि किन की बट्टी है, तो कहा कि मणिनगर सब जोन की टीचर्स की बट्टी है। तो जब अपनापन होता है तो बहुत खुशी भी होती है, और साथ ही साथ ये भी चिंतन चल रहा था कि ये प्रकाशमणि दादी का मास चल रहा है, अगस्त मास, दादी स्वतः ही याद आती है। और दादी को जो सबसे प्रिय थी वो कौन थी? हमारी आदरणीय सल्ला दीदी जी। क्योंकि दादी जी का संकल्प और दीदी जी का करना प्रैक्टिकल, बहुत ही हुज्जत से दादी जी दीदी जी को कहते थे और दीदी जी एक सेकंड में ही हाँ कर देते थे। तो ऐसी आदरणीय सल्ला दीदी जी, जिसकी ये फुलवारी है, वैसे तो पूरा गुजरात उनकी फुलवारी है, लेकिन मणिनगर सबजोन जिनको एक एक को सींचा है दीदी ने, तो यही अनुभूति हो रही है कि आदरणीय दादी का आशीर्वाद, दीदी जी की पालना सकाश हम सबके साथ है। और जैसे ही, क्योंकि बट्टी का जब आयोजन करना होता है तो आप सभी को पता है मधुबन में विशेष रूप से शिलू बहन जी संभालते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम शिलू दीदी को अपडेट दे रही थी, दीदी अभी मलेशिया में है। आप सबको बहुत 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 याद दी है और कहा कि खास मेरा याद प्यार देना, वो 27 को आने वाले हैं। आदरणीय शशि बहन जी अभी 7:30 बजे हम सबके बीच में आएंगे, लेकिन आज सेवाधारियों का भी याद सौगात का दिन है तो दीदी उसमें व्यस्त है। पर एक जो अनुभूति यहाँ पांडव भवन में होती है वो ये है कि हम सबको बुलाने वाला कौन है? तो बाबा है। और पांडव भवन में विशेष ये अनुभूति होती है कि बट्टी कराने वाला भी बाबा ही होता है, चाहे कोई भी निमित्त बैठा हो बट्टी कराने हेतु, लेकिन बाबा हम बच्चों में वो शक्ति भरता है, बल भरता है। आज परम सौभाग्य है हम सबका कि इस पांडव भवन की तपस्या स्थली पर हमें भाग्य मिला है तपस्या करने का। और वो भी अभी सुन रही थी, नंदा बहन कह रही थी कि 2 साल से एप्लीकेशन डाली थी, आज स्वीकार हुई है और आप सभी वो बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हो जो यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि यहाँ भले टीचर्स अधिक है लेकिन 200 को ही परमिशन मिलता है और आप सभी उसमें सिलेक्ट होकर के आ गए हो, तो अपने लिए हम ताली बजा देते हैं कि बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है जो हमें ये चांस मिला, गोल्डन चांस। क्योंकि जिस प्रकार हम समय देख रहे हैं जो चल रहा है, बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, ऐसे ऐसे समाचार हम सुनते हैं जो दिल सोचने को मजबूर हो जाता है कि आने वाले समय में हमारी खुद की क्या तैयारी हो। आप सभी जानते हैं अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, कितने सेकंड्स में, खाली 20 सेकंड, 20 सेकंड में जितने बैठे थे वो सभी, है ना, एक कोई भाग्य से बच गया, वैसे दो बचे थे, एक जो बैठा हुआ उसकी सीट, जैसे प्लेन फटा तो उसकी सीट उखड़ करके बाहर आ गई, क्योंकि वो जहाँ फायर ऑफिसर्स, क्योंकि सारी फायर की टीम थी वहां, तो हमारे एक स्टूडेंट है फायर ऑफिसर, तो वो बता रहे थे, मैंने बोला वो बचा कैसे, तो उसने कहा कि उसकी सीटें अलग हो गई थी, ऐसे ही निकल गई और वो जैसे दूर फेंक गया उससे। और दूसरी एक बहन थी जो 5 मिनट लेट हुई थी पहुंचने में, उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे, क्योंकि लंदन की फ्लाइट थी, कि आप कैसे भी करके मेरे को जाने दो, तो कहते कि नहीं, फ्लाइट ऑलरेडी रनवे पर आ चुकी है, तो उसको नहीं जाने को मिला, तो अच्छा हुआ या नहीं हुआ ना, बच गई। उसी प्रकार हमने धराली गांव का भी देखा, पूरा गांव साफ हो गया, उसको कितना टाइम हुआ, केवल 30 सेकंड्स, सेकंड्स मिनट भी नहीं, 30 सेकंड्स में चला गया। तो ये जब दोनों ही हादसे अभी अभी हुए, तो संकल्प चलने लगा कि जो बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। तो मैंने अपने आप को पूछा कि क्या लग सकता है, एक सेकंड में चलो फुल स्टॉप न लगे, लेकिन एक सेकंड में अशरीरी बन जाना, एक सेकंड में शरीर से बाहर निकल जाना, बाबा याद आना, वो भी जब मौत सामने खड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में तो क्या मेरी तैयारी है। तो बहुत ही संकल्प चले, क्योंकि लगा कि बहुत दूर है ये तो मंजिल हमारे से, क्योंकि बाबा जब कहते थे ना एक सेकंड में फुल स्टॉप, एक सेकंड में पास होना, एक सेकंड में अशरीरी होना, बाबा कभी एक मिनट की भी बात नहीं करी है, हमेशा क्या कहते हैं, एक सेकंड। तो ये जो सेकंड्स वाले हादसे हुए, उसने चिंतन करने को मजबूर किया और उसका महत्व समझा कि बाबा जो कहता है ना एक सेकंड, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार वो फ्लाइट में बैठी कि अगर मुझे ये पता चले कि 20 सेकंड में प्लेन क्रैश होगा तो मुझे क्या क्या याद आएगा उस समय, या क्या अवस्था होगी। तो ये जो भट्टिया है, इस भट्टी का बहुत सुंदर नाम रखा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ योग तपस्या भट्टी। क्योंकि आने वाला समय हम सभी जानते हैं, हम सभी ने बहुत लंबा समय आध्यात्मिक मार्ग पर हम सभी चले हैं, बाबा की श्रीमत के आधार पर बहुत सेवाएं करी है, गांव गांव में सेवाएं करी, अनेकों ब्राह्मणों को जन्म दिया, अनेक बाबा के बच्चे बने। आज हमारी पवित्रता की तपस्या, योग की मर्यादाएं, ये सब हमारे स्टूडेंट्स के सामने उदाहरण मूर्त है, हम सभी वो आत्माएं हैं जो आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। आज भी हम सभी को जो संसार जिस नजर से देखता है, बहुत सम्माननीय नजर से देखता है, कहां देवियों के नजर से देखता है। हम सभी अनुभवी है कि कहां कहां जाते हैं तो लोग आरती भी उतारते हैं, कोई नतमस्तक भी होते हैं, कईयों को भावना होती है कि बस दीदी के चरण पड़ जाए, हमारे ऑफिस में पड़ जाए, हमारे घर में पड़ जाए, उनके वाइब्रेशंस मिल जाए, उनकी दृष्टि मिल जाए। कितनी ऊंची भावना है। तो यहां तक तो हम सभी पहुंचे हैं, लेकिन बाबा ने जो लक्ष्य दिया है हम निमित्त टीचर्स बहनों को, वो बहुत आगे है, बहुत ऊंचा है। और इसलिए ये सब माइलस्टोन्स हैं जो हमारे, हम लोग जब यहाँ ऊपर आ रही थी उसी दिन 17th को हम ऊपर आए, तो उसी दिन मैराथन का भी डे था। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बीच बीच में किलोमीटर्स लिखे थे कि यहाँ 6 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ 10 किलोमीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ 21 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये माइलस्टोन्स होते हैं। आप लोग भी जब जैसे हम यहाँ आते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो माइलस्टोन्स आते हैं। तो मुझे संकल्प चल रहा था कि ये बट्टी क्यों रखी, और जब यहाँ आने के बाद जब पूछा कि बट्टी किसकी है, कहाँ टीचर्स की है, और जिन जिन फैकल्टीज को भी हमने बताया कि 200 टीचर्स हैं, सभी के मन में इतना ऊंचा भाव है, और सभी मधुबन निवासी भी उस तैयारी में लगे हैं, तो उन सभी मधुबन निवासियों की तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है। तो ये जो तैयारी चल रही है, तो उसके ऊपर एक चिंतन चला कि क्यों नेहा दीदी को टीचर्स का विचार आया। यहाँ होती है बट्टियां, हर मंगलवार को शुरू होती है, फ्राइडे तक होती है, भाई बहनों के ग्रुप्स आते हैं, टीचर्स भी उसमें होते हैं, लेकिन थैंक्स नेहा दीदी को है कि जिन्होंने सभी टीचर्स को बुलाया, क्योंकि सारी ट्रेन के इंजन तो टीचर्स हैं। अगर टीचर्स भरपूर हो जाएंगी, टीचर्स संपूर्ण बन जाएंगी, तो बाकी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो खास तो नेहा दीदी ने आप सभी के लिए सोचा, उसके लिए दीदी को भी बहुत बहुत थैंक्स है जो संकल्प आए। ने तो भाई बहनों का ही विस्तार के लिए सोचते हैं, पर टीचर्स के लिए सोचा, वो बहुत अच्छी बात लगी। तो ये होता है, हम सभी जानते हैं कि आफ्टर 40-45 ईयर्स डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप कहते हैं ना, कई लोग रेगुलरली कराते भी होंगे। तो हम जब इस आध्यात्मिक मार्ग पर लंबे समय से चलते हैं, तो आपको लगता है कि स्पिरिचुअल चेकअप भी होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। ये बट्टियां उसी के माइलस्टोन्स है, है ना, चेकअप करवा लेते हैं हमारा। जब भाई बहनों के साथ हम आते हैं बट्टी करने, तो इतना फोकस हमारा बट्टी पर नहीं होता है, पर जब टीचर्स की होती है तो फुल फोकस हमारा होता है कि हमें बट्टी पर हम एकाग्र होकर के हम करते हैं, निरसंकल्प होकर करते हैं, कोई कारोबार नहीं होता है। तो ये जो बट्टी है वो स्पिरिचुअल चेकअप है। क्या चेक करना है? मेरा मनसा वाचा कर्मणा, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति, मेरा भाव मेरी भावनाएं मेरे वाइब्रेशंस क्या कह रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो ये चेकिंग, विचार वाणी व्यवहार किस दिशा की ओर चल रहे हैं। देखो, चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, चल तो सभी रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मंजिल की दिशा की ओर चल रहे हैं, ये भी तो अनिवार्य है ना देखना। तो ये केवल हमें चेकिंग करनी है, बहुत सारी बातें भी देखेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो भट्टी है ना, ये केवल तैयारी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। भट्टी तो वापस सेंटर में जाने के बाद शुरू होगी। यहाँ तो माल मिलेगा, है ना, अलग अलग रूप से भाई बहनों से भी मिलेगा, बाबा भी शक्ति भरेगा, लेकिन पूरा प्लानिंग के लिए ये हमको 2.5 दिन मिले हैं। वैसे 3 दिन है, लेकिन शेड्यूल में लास्ट डे आपका बाबा पहाड़ी पर है, वहाँ भी योगी करना है, तो ये 3 दिन हमारे लिए प्लानिंग का टाइम है। जैसे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डेट फिक्स होती है, ड्यूटीज फिक्स होती है, लोगों को कार्य दिया, जैसे एक बड़े रूप से होता, फिर महीन रूप, फिर महीन रूप, फिर महीन रूप, और फिर प्रैक्टिकल, यही तो करते हैं। यही हमें अभी साधना के लिए भी करना है। तो ये 3 दिन जाएगा हमारा प्लानिंग में। प्लानिंग में करना क्या है, आज बताया कि लक्ष्य और उद्देश्य की बात है, तो लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है। कई बार मंथन करते हैं तो लगता है कि दोनों सेम ही तो है, क्या अंतर है। लक्ष्य और उद्देश्य, हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो हम पहले क्या लिखते हैं, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, यही लिखते हैं। तो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, मुझे क्या पाना है, लक्ष्य ये है मुझे क्या पाना है। उद्देश्य क्या है, क्यों पाना है, वाई। और तीसरा आता है कैसे पाना है। जब तक ये 3 सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं, जब 3 एक लाइन में नहीं आते हैं, तब तक जो बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्य को लक्षण में लाओ, तो वो नहीं होता है। जैसे अर्जुन है, सभी पांडवों को, कौरवों को भी लक्ष्य दिया गया था, क्या, पक्षी की आंख, सभी को दिया था ना, लेकिन एक कर पाया, बाकी नहीं कर पाए। तो लक्ष्य तो सभी के पास था, लेकिन अर्जुन के पास उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, नंबर 1 धनुर्धर बनना है। लगन थी ना उसकी कि मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, और इसलिए उसकी एकाग्रता ने काम किया। एकाग्र कब हुआ, जब लक्ष्य और उद्देश्य, क्या पाना है, पक्षी की आंख पर तीर लगाना है, उद्देश्य था कि फर्स्ट करना है, तो उसकी एकाग्रता, तब उसको पूछा गया, सबको पूछा गया क्या दिखाई देता है, तो सबने अपना अपना जवाब दिया, आप सभी भी जानते हैं। अर्जुन ने क्या जवाब दिया, पक्षी भी नहीं, पक्षी की आंख दिखाई देती है, ये है एकाग्रता, है ना। तो 3 बातें चाहिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अंतर्मुखता, एकाग्रता और दृढ़ता। अंतर्मुखता, एकाग्रता और दृढ़ता चाहिए। तो हम कुछ एक बातों का चिंतन भी करेंगे, आप सभी लिखेंगे भी। देखो, हम टीचर्स के बहनों मन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, 3 चीजें इम्पोर्टेंट है हम सभी की लाइफ में। एक तो मैं खुद, सेल्फ, दूसरा मेरे साथी सेवाधारी, और तीसरा मेरे स्टूडेंट्स। यही है ना, कि और चौथा कुछ है संसार में, कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स ले लो या सेवा ले लो, बात तो यही है। तो ये 3 चीजें हैं। तो हमें जो लक्ष्य निर्धारित करना है, ये 3 फील्ड में करना पड़ेगा, स्वयं के बारे में, साथियों के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में। हम सोचते हैं कि जब छोटी बहनें हैं, हम सोचते हैं कि हमारा तो स्वयं तक ही सीमित है ना, हमको थोड़ी सोचना है कि साथी कैसे चले, हमको थोड़ी सोचना है कि स्टूडेंट आए नहीं आए, भंडारी करी नहीं करी, है ना, सोचना है कि नहीं सोचना है, तो इंचार्ज बहनों का काम है, ऐसा नहीं है, है ऐसा, कि नहीं है, है ना, सबको सोचना है ना, क्योंकि हमारा कनेक्शन है, केवल साथियों का कनेक्शन इंचार्ज के साथ नहीं है, साथियों का कनेक्शन किसके साथ है, आपसी, आपसी कनेक्शन ज्यादा है ना। आज योग सबसे अधिक डिस्टर्ब कौन करता है, आंसर नहीं चाहिए जस्ट, है ना, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं वही उसमें ही कुछ ना कुछ होता है तो डिस्टर्ब होते हैं। अभी ये सारी चीजों से परे उठना होगा। कैसे? अगर दृढ़ता आई, विल पावर जागृत किया, तो शारीरिक बीमारी है, संजोग है, परिस्थितियां है, विघ्न है, बहुत सारी बातें आती है लाइफ में, बहुत सारी चीजें हमारे विरुद्ध होती है, हम चाहते ऐसा नहीं होता है, कोई आज्ञाकारी होते कोई नहीं होते हैं, कोई महिमा करने वाले होते हैं कोई ग्लानि करने वाले भी होते हैं, वैरायटी, क्योंकि हम सबका जीवन पब्लिक का है, पब्लिक जीवन है, तो उसमें बहुत सारी बातें आती है। लेकिन बाबा ने, आप सभी को याद हो तो तपस्या वर्ष की मुरलियों में ये कहा था कि बाबा कोई भी बहाना सुनेगा या नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। हम कहेंगे कि बाबा ये साथी था ना या ये साथी थी तो मैं संपन्न नहीं बनी, नहीं ये नहीं चलेगा, या ये विघ्न था तो हम संपन्न नहीं बने, ये परिस्थिति थी तो संपन्न नहीं बने, शरीर ही काम नहीं कर रहा था तो संपन्न नहीं बने, तो ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा ना, हमको तो करना ही है, कैसे करेंगे। तो एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि हम सब, बाबा कहते ना, चढ़ती कला में हैं, हम सभी ऊपर ही जा रहे हैं। कोई फेज लाइफ में आता है कि जिसमें हमको लगता है कि हम डाउन है, लेकिन हम डाउन नहीं होते हैं। आप सबको, जैसे आप सभी माउंट चढ़ के आए है ना व्हीकल में अपने अपने साधनों से, तो माउंट में सारे रास्ते ऐसे नहीं है, चढ़ाई ऊपर ही चढ़ रहे हैं, लेकिन कहां ऐसा भी है, अगर मान लो कि गाड़ी इस पोजीशन पर है और कोई इसको क्लिक करे, उसका फोटो निकाले और आपको पूछा जाए कि गाड़ी ऊपर जा रही या नीचे जा रही, तो आप क्या कहेंगे? फोटो में तो यही बता रहा है ना कि नीचे जा रही है, पर वो नीचे जा रही थी कि टेम्पररी थोड़ा ऐसे हुई फिर ऐसे हुई, ठीक है ना, फिर तो ऊपर ही आए। तो कई बार हमारी लाइफ में होता है उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हमारी गाड़ी ऐसे होती या किसी और की भी गाड़ी ऐसी होती, वो मोमेंट हम देखकर कहते हैं कि ये नीचे जा रहा है, पर एक बात है कि हम सभी, कोई भी नीचे नहीं जाता है, कोई भी नहीं, हम सभी ऊपर ही जाते हैं। टेम्पररी फेज में ऐसे होता, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो हम चढ़ाई पर है, क्योंकि संगम युग चढ़ती कला का युग है, कभी ठहरते हैं कभी पीछे भी जाते हैं, लेकिन वहां से उतर नहीं जाते हैं, तभी तो बैठे हैं ना, इतने सालों से संगम पर बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बने रहे हैं बाबा के साथ। तो ये जो उतराई चढ़ाई वाला हमारा जीवन है, तो आज हम सबसे पहले स्वयं का लक्ष्य देखो, बच्ची का तो लक्ष्य है प्लानिंग का, हमारा लक्ष्य केवल है प्लानिंग का। देखो हम सबका लक्ष्य, जब हम कुमारी थे सभी, तो क्या लक्ष्य था? ब्रह्मा कुमारी बनना था लक्ष्य। और आज पूछते उद्देश्य क्या था, या उस समय भी पूछा जाए कि क्यों बनना है ब्रह्मा कुमारी, इतना विरोध था, कई लोगों के एक एक की स्टोरी कहानी सुने, बहुत इंस्पायरिंग, एक एक बहन की स्टोरी है, भागवत बन जाए ऐसी, बहुत सारे बंधन क्रॉस किए, समाज ने रोका, परिवार ने रोका, लेकिन फिर भी हम बन गए। हमारी वरिष्ठ दीदियों का पूछो तो उस समय तो बहुत ही विरोध था, तब भी वो कैसे कैसे हालातों में, कैसी कैसी परिस्थितियों में ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो लक्ष्य था ब्रह्मा कुमारी का, और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था भगवान के कार्य में मददगार बनना है, संसार को परिवर्तन करना है, स्वर्ग धरा पर लाना है ना। हम सबके बहुत ऊंचे ऊंचे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और यही तो बताते कि पर्पस क्या था ब्रह्मा कुमारी बनने का हमारा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हम बन गए, बनने के बाद अभी एक एक लक्ष्य और आगे बढ़ते हैं। आप सबको याद हो जगह हम पहाड़ी चढ़ते हैं ना, तो एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं तो दूसरी दिखाई देती है कि अच्छा ये भी है एक, वहां पहुंच जाएंगे तो और आगे और पहाड़ी दिखाई देती है। तो ये हमारा जो लाइफ है वो ऊपर चढ़ने का जो मार्ग है, तो उसमें जैसे जैसे हम लक्ष्य को पहुंचते जाते हैं उससे ऊपर के लक्ष्य दिखाई देते हैं और हम उस दिशा की ओर जाते रहते हैं। तो अभी आज है ना, क्योंकि ये प्लानिंग के लिए भट्ठी है, तो हम स्वयं के बारे में, स्वयं में दो चीजें आती है, एक शरीर, क्योंकि ये सबसे पहला साधन है। अगर ये साधन ने काम नहीं किया तो साधना होगी नहीं होगी, तो ये साधन के लिए भी लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो आप क्या क्या करना चाहते हो शरीर के लिए, और दूसरी है आत्मा, आत्मिक उन्नति के लिए। तो ये दो अलग आपको लिखने हैं, शारीरिक शरीर के हिसाब से। देखो कईयों की चाहना होती है कि मुझे रोज वॉकिंग करना है हेल्दी रहने के लिए, 5 दिन चलेंगे, 6ठे दिन क्या होता है नहीं कर पाते, सेवाओं में इतने अधिक व्यस्त है, एक्सरसाइज फाइनल की वो भी नहीं होगा, कोई डाइट फाइनल करते हैं कि भाई इसी डाइट पर रहना है, पर फिर टूर पर जाना हुआ तो डाइट भी छूट जाता है। बहुत सारी चीजें होती है शारीरिक रूप से कि हमें ध्यान देना है, छोटी सी बात करनी होती है लेकिन फिर छूट जाता है। ये इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूं कि अंतिम समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, और उसका जो पश्चाताप है, उसका जो रिग्रेट है ना, वो बहुत बड़ा होगा कि काश ये टाइम थोड़ा मिल जाता, मैं अविक्त मुरलियां पढ़ लूं, मैं 2 से 5 योग करना चाहती थी जो नहीं कर पाई। ऐसे क्या क्या हम केवल अभी चाहना लिखेंगे, आप करेंगे प्लानिंग तो अभी, और हमारे पास है ना 3 दिन कंप्लीट है जिसमें हमको गाइडेंस भी मिलेगा बाबा से, और हमें वो क्लिक भी होगा, आज हमने तय किया होगा ना, तो आप वो पॉइंट्स पिक कर पाएंगे सेशन से। तो शरीर के हिसाब से आप क्या चाहते हो, इसको फिट रखने के लिए आपको क्या क्या करना, दिल की इच्छा है, भले नहीं हो रही वो नहीं सोचो, लेकिन क्या चाहते हो, लक्ष्य तो फाइनल करें हम, और क्यों, कैसे के लिए 3 दिन है, कैसे के लिए बीच बीच में बाबा के पास बैठकर प्लानिंग करिएगा। आत्मिक उन्नति के लिए भी क्या करना है वो भी लिखिए, कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में बस ये तो अनुभव करना ही करना है। जैसे मेरी दिल की, जब ये सब हुआ तो मैंने लिखा, खुद लिखा कि मुझे क्या क्या करना है, तो मैंने 7 बातें निकाली आत्मिक उन्नति के लिए, शरीर के लिए भी निकाली, इसको फिट करना है, सेवा के बारे में, तो मैंने लिखा कि बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी मुरलियां चली है, मुझे एक बार शांति से बैठकर पढ़ना है सब कुछ, बड़े पूरा लिटरेचर नहीं पढ़वाए कोई नहीं, लेकिन भगवान जो संसार में एक बार 5000 साल में आता है, उसने बोला हुआ है, उनके महावाक्य एटलीस्ट उसका स्टूडेंट बनकर वो तो पढ़ लूं, फिर बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने हैं, उसका सुख अनुभव करना है। मैंने अपने रीति से, आप अपने रीति से लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या पाना है, अगर वो लास्ट समय आ जाए, चल ही रहा है लास्ट समय, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे वो गिल्ट ना रहे कि ये काम रह गया मेरे से, मेरे को बहुत करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसी प्रकार सेवा साथियों में भी आपकी चाहना क्या है, वो नहीं कि ये परिवर्तन हो जाए, ये नहीं, आपको क्या करना था जो हमने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना सुनाती हूँ कि साथी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हुए होते हैं, जितनी कर्मणा स्थूल वो करते हैं उतना हम नहीं भी करते होते हैं कई बार। तो मैंने उस दिन से शुरू किया, काफी समय से, जब ये रियलाइजेशन हुआ तब से, कि वो कुछ भी मना, अगर पानी का ग्लास भी देते हैं तो मैं थैंक यू अवश्य करती हूँ। अगर उसने बहुत मेहनत करी तो मैं उसको उसी समय अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत मेहनत की, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं। भोजन करके जब भी उठती हूँ तभी भी जिसने बनाया उसको थैंक्स करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे एक वंडरफुल अनुभव ये हुआ कि मेरा सेकंड थॉट नहीं चलता है। देखो कुछ गलत होता है ना तो हम एक सेकंड में बोल लेते हैं, लेकिन अच्छा कोई इतनी मेहनत से कर रहा है उसको कभी नहीं बोलते हैं। और मनी मन सोचते हैं, मनी मन होता भी है, बहुत अहोभाव भी होता है उनके लिए, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन हम वो जताते नहीं है, चाहे व्यस्तता के कारण नहीं जताते होंगे, कोई भी रीजन होगा। लेकिन मैंने ये शुरू किया तो उससे जो साथियों का सुख है, किसी ने बहुत अच्छा भी लिया उसको, लेकिन कई बार ये भी कहते हैं कि आप क्यों बार बार थैंक यू करते हो, ये तो हमारी फर्ज है, हमने दिया उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो शांति मिलती है, मुझे जो अंदर एक थॉट भी नहीं चलता है, हाँ अगर कुछ ऐसा भी होता है जो करेक्शन वाला है तो भी प्यार से हम कहते हैं कि भाई माना हाँ तो हाँ, अच्छा किया तो अच्छा किया, नहीं किया तो इसको कैसे अच्छा कर सकते वो भी बताते हैं। तो इससे जो मन में जो साथियों के प्रति जो प्यार है ना, कई बार नहीं संसार में भी कहते हैं कि किसी के जाने के बाद उनकी श्रद्धांजलि में अच्छे अच्छे सेंटेंस बोले हम, उससे अच्छा है कि जब वो है तभी बोल ले वे, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको में भी पावर आएगी, है ना। तो हर चीज नोटिस करके हम वो कहना शुरू किया, थैंक यू, अप्रिसिएशन, शुभ भावना, दिल से दुआएं देना। दिल से दुआएं देने से क्या हुआ कि साथी के बारे में कभी भारीपन होता है तो वो हल्का हो गया। और भट्टी के लिए आप सभी समय निकाल कर आए हैं, अपने इतने कारोबार में व्यस्त हो, इतनी सेवाएं छोड़कर आए हैं, तो पहले हल्का होना बहुत जरूरी है, तभी तो आगे फ्लाइट उड़ेगी ना, भारी होंगे तो उड़ेंगे कैसे, है ना। जैसे ये ग्लास है पानी का भरा हुआ, उसको मैं हाथ में रखूं तो कितना होगा, 250 ग्राम, 300 ग्राम, चलो मान लेते 300 ग्राम मेरे हाथ में है, तो कोई भारी थोड़ी है। इतने किलो का शरीर 300 ग्राम उठा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वो 300 ग्राम का ग्लास मैं 4 घंटा उठाऊं तो, उठा के रखूं तो क्या होगा, है ना, थोड़ी थोड़ी नमनेस आएंगी फिंगर्स पर। मान लो कि मैंने 12 घंटा उठाया उसको तो क्या होगा, क्या होगा, धीरे धीरे ये नसें दुखना शुरू होगी, यहां तक वो पेन आ जाएगा, है ना। या 24 घंटा उठाया, है ना, कितना हैवी, ये पूरा हाथ नम कर देगा, पूरे हाथ की नसों में वो पेन शुरू हो जाएगा। तो मैटर क्या है, 300 ग्राम इंपॉर्टेंट था कि टाइम इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट था, किसने काम किया, दर्द किसने दिया, 300 ग्राम ने दर्द दिया या टाइम ने दर्द दिया, 24 घंटे ने, 12 घंटे ने दर्द दिया, है ना। हमारी लाइफ में भी बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन हम कितना उसको होल्ड करते हैं अपने यहां, वो दर्द देता है, पेन वहां से आता है। तो एक एक्सरसाइज करेंगे हम अभी, भैया रेड लाइट्स करना। हम सभी इन्हें बहुत दिल से ये एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी जो होवनहार देवियां हो, जिनका 2500 साल पूजन होना है, आज दिन तक हो रहा है। हम वो शिव शक्ति महान आत्माएं हैं हम सभी अपना अपना कोई मंदिर सिलेक्ट करो और वहां उस मूर्ति में विराजमान होकर अपना वरदानी हस्त रखेंगे, राइट हैंड वरदान स्वरूप में। आप शिव शक्ति परमात्मा की डायरेक्ट संतान, उसकी प्रथम रचना, जो दुख हरता सुख करता परमात्मा है, उसके हम मास्टर्स बैठे हैं, परम सतगुरु के गुरु भाई बैठे हैं। ब्राह्मण सुफरिश्ता सुदेवता, ये वरदानी हाथ दुआओं का प्रतीक है, शुभ भावना शुभ कामनाओं का प्रतीक है। स्वयं के सामने विजुलाइज करो कि अनेक भक्त हैं जो बहुत दुखी अशांत हैं। मैं दिल से दुआएं देती हूं, सदा सुखी भव, शांत चित भव, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। आप अपने संपन्न देवी स्वरूप में हो और आपके सामने उन आत्माओं को इमर्ज करो जिससे आपका मन कभी खट्टा हो गया, कभी कड़वा हो गया, कभी खारा हो गया। उन आत्माओं ने आपको दुख पहुंचाया, हर्ट किया, लेकिन आप उनके लिए शुभ भावना रखते हो। एक एक आत्मा का चेहरा सामने लाओ और बहुत दिल से दुआएं दे। उनकी जो भी कमी है वो भर जाए। उनका कल्याण हो। कुछ गलत फहमी के कारण उन्होंने जो भी मेरे साथ व्यवहार किया, लेकिन मैं बहुत दिल से उनकी स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए दुआएं दे रही हूं। परमात्मा की सारी शक्तियां आपको मिले। परमात्मा से सर्व गुण आपको मिले। बहुत दिल से माफ करना है, माफी से ऊपर दुआएं देनी है। लाख लाख दुआएं हैं उन सभी आत्माओं को। शांति शांति शांति। तो अभी अगर नहीं भी कर पाए, मान लो शुरुआत करी लेकिन रात्रि सोने से पूर्व वो सभी आत्माओं को हम है ना बहुत दिल से शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि उनका मन में रखना वही दर्द का कारण है। तो उससे हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। वैसे भी देखो डॉक्टर के पास कोई भी मरीज जाता है रिपोर्ट लेकर के कि D3 बहुत कम है, B12 बहुत कम है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, क्या कहेगा? ये कहेगा कि आपकी गलती है, क्यों रोज सनबाथ नहीं लिया, क्यों सूर्य से D3 नहीं ली, इतनी भी समझ में नहीं आता बातें है ना, वो क्या करेगा? भरने के लिए देगा, देगा ना। B12 अगर बहुत कम है तो इंजेक्शंस भी दे देगा। तो जो भी कमी होती है डॉक्टर वो भरता है। हम तो डॉक्टर से भी ऊपर देवियां हैं, है ना। तो जो भी आत्माएं हैं जिससे कुछ ना कुछ मेरे पास जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ कुछ तो कमी है ना, तो हम उनको भरे या हम उनको बद्दुआएं देंगे, है ना। सही बात तो यही है ना कि हम उनमें भरे, बाबा से लेकर भरे, हम तो क्या भरने वाले हैं, लेकिन बाबा से लेकर भरे। तो क्या है कि आप बहुत हल्के हो जाएंगे, और जब तक हल्कापन नहीं आया तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक बाबा की मुरली पढ़ रही थी तो बाबा ने कहा कि टीचर्स कैसी हो, बहुत सारी आपको भी पता ही है, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें जो बहुत दिल को छू गई वो ये था कि बाबा ने कहा कि टीचर्स ऐसी हो खुश मिजाज कि उनको देख करके सामने वाला भी खुशहाल हो जाए। ये बाबा के शब्द थे। तो चाहे कुछ भी हो लेकिन हम सभी कैसे रहे, है ना, खुश मिजाज, है ना। उसकी शुरुआत करें इस भट्टी से, है ना। हम कहते कि कहाँ भी गवर्नमेंट के पास जाना होता है ना तो आधार कार्ड बताना होता है, क्योंकि अभी सारा ही लिंक हो गया है ना आधार कार्ड से, पैन कार्ड भी लिंक हो गया है। हमारी आइडेंटिटी क्या, आधार कार्ड है कि नहीं। कहाँ भी जाना है तो लेकर चलना पड़ता है, लेकिन हमारे जीवन का जो आधार है उसकी आइडेंटिटी क्या है, है ना। हमारा चेहरा, हमारी मुस्कुराहट, हमारा खुश मिजाज, है ना। बाबा ने कई बार कहा कि बाबा वतन में क्या करते हैं, सारा टाइम किसको देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। और मुझे तो बड़ा नशा रहता है कि अपने बच्चों को तो देखते हैं लेकिन टीचर्स को पहले देखता है वो, है ना। तो बाबा क्या देखना चाहता है, है ना। एज अ टीचर्स हम सभी जब साथ में रहते हैं, एक बहन का भी मूड बिगड़ा हुआ हो तो अच्छा लगता है बाकी सभी बहनों को, है ना, नहीं लगता अच्छा। तो बाबा जो हमको इतनी पालना, इतनी पढ़ाई, इतना प्यार, संकल्प हमारे पूरा कर रहा है, सबका अनुभव है, हम बस संकल्प करें और बाबा पूरा करता है। तो इतना सब कुछ वो देता है, वो एटलीस्ट एक तो अपेक्षा हमसे रख ही सकता है ना, और वो है हमारा खुशहाल चेहरा, जिसको देखकर आज संसार चलना है। बाबा कहते हैं ना कि इतना दुख होगा संसार में, उसमें हमारे चेहरे सेवा करेंगे। बाबा ने कहा कि हमारे चेहरे चैतन्य म्यूजियम है, परमात्मा बाप के चेहरे को प्रत्यक्ष करने वाला हमारा चेहरा है। बाबा ने यह भी कहा कि अगर चेहरा देखे टीचर्स का तो ब्रह्मा बाप दिखाई दे, और ब्रुकुटी में देखे तो निराकार शिव बाप दिखाई दे। तो बाबा ने लक्ष्य तो दिए ही है हमको, ब्रह्मा माँ दिखा, यस, जबान पर मम्मा माँ हो। तो बस एक छोटी सी बात है, हमारी सारी इच्छाएं वो पूरी करता है, हम बस उसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करें। सही बात है ना, वेट एंड वॉच ना करें। सही बात है ना, उसी को प्यार से बिठाओ और पूछो कि क्या है, मतलब ऐसे नहीं कि डांट डपट करने के लिए, है ना, प्यार प्यार से पूछो, है ना, वो दिल खाली करे। हम सभी पेरेंटिंग भी करते हैं ना सभी, जब वेकेशन होता है, समर वेकेशन, जब बच्चों के क्लासेस चलाते हैं तो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो हम बहने करती हैं पेरेंटिंग, तो उसमें क्या कहते, मुख्य बात ये कहते कि हम पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, कैसे, कि बच्चा कुछ भी कह करके डरे नहीं कहने से। भाई माँ बाप को कहेंगे ना कुछ नहीं होगा, वो समा लेंगे, समझा देंगे, प्यार करेंगे, प्यार कम नहीं होगा, ये सब विश्वास उनको देंगे तो बच्चा उपन भी होगा ना। हम तो यही कहते हैं पेरेंटिंग में, हम जगत माताएं हैं, है ना, विश्व माताएं हैं, तो हम ऐसे बने। और उसके बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, अब अपना चेहरा बस रिलैक्स रखो और स्माइलिंग रखो। कोई भी आपके पास आकर बोल सकेगा, अपने दिल की बातें शेयर कर सकेगा, उनको चाहिए क्या। कई बार हम सभी अनुभवी हैं, किसी को सॉल्यूशन चाहिए संसार में, चाहिए किसी को नहीं चाहिए। एक बात ये गांठ मान ले, किसी को सॉल्यूशन नहीं चाहिए और टीचर्स को तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ज्ञान देने वाली देवियां हैं, सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास, हमको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए। हमको केवल एक बात चाहिए कि हमको कोई प्यार से सुने, सुनने वाले चाहिए, ठीक है या नहीं। बाकी जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो हमको भी पता ही है, और वास्तव में कहो ना तो सॉल्यूशन किसी के पास है भी नहीं जो वो दे सके। लगता है कि किसी के पास सॉल्यूशन है, बहुत बहुत तो क्या करेंगे, चाहे हमको ज्ञान सुनाए चाहे उसको ज्ञान सुनाए, मतलब सॉल्यूशन तो यही है कि ज्ञान है सॉल्यूशन, तो उससे अच्छा है हम ही चला ले वे ज्ञान। सही बात है कि नहीं। तो हम प्यार से, है ना, इतने सरल, इतने डबल लाइट, बाबा भी तो यही चाहता है। फरिश्ता क्या है, डबल लाइट है, कर्मातीत बनना, बाप समान बनना। साकार बाबा को हम सभी ने देखा नहीं है, लेकिन सुना तो यही है कि सबको आप समान बनाते 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 बाबा खुद भी संपूर्ण बन गए ना। तो हम भी सभी को बनाते बनाते बन सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। कई बार तो हम कहते हैं कि बाबा अब भी होता तो, है ना, अब भी होते बाबा, जहां इतना मोबाइल, इतने साधन, सब कुछ है, तो वो भी शायद संपन्न ना बने, है ना। कभी बोलने में तो बोल लेते हैं बहने आपस में, है ना, लेकिन बाबा बने, नया ज्ञान, घर के विघ्न, बाहर के विघ्न, चैलेंज था ना, लेकिन सबको संभालते हुए भी संपन्न बने, आप सभी जानते ही हो। तो हमें भी अभी बस एक ही धुन हो, सेवा दिन रात होगी, सेवा में कमी तो आनी नहीं है। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि रात को भी सोने को नहीं मिलेगा, इतनी सेवा होगी। तो सेवा चलेगी, हिसाब किताब चलेंगे, विघ्न भी चलेंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन सभी के बीच में मेरी ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहे। और वो ज्योत प्रज्वलित है वो बताएगा कौन, है ना, हमारा चेहरा। तो एक गांठ मार लो कि हर्षित मुख खुश रहना है। हम लोग जब परदादी थे, शांतामणि दादी, निर्मल शांतामणि दादी, उनको राखी बांधने के लिए आए थे, तो जब दादी को राखी बांधी तो दादी से पूछा कि दादी ब्रह्मा बाप समान बनना हो तो क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि वो सबसे नजदीक तो वही थी। तो हमने पूछ लिया, तो मैंने सोचा कि दादी बहुत लंबा चौड़ा पुरुषार्थ हमको बताएगी कि ऐसा करना, है ना। तो दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा सदा खुश रहना। तो उस समय समझ में नहीं आया, मैंने सोचा इसमें क्या, ब्रह्मा बाप समान बनना है, और करण रहना क्या है, खुश रहना। तो मैंने बोला बस दादी इतना, और कुछ बताओ ना। तो कि दादी के और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुश रहना हर हाल में। मैंने बोला ठीक है। फिर एक वीक तो क्या, एक दिन में ही पता चल गया कि कितनी मेहनत की बात होती है खुश रहना, है ना। तब लगा कि, और आप सबने शायद भाग्य विधाता भी देखी होंगी, है ना, कितनी कितनी परिस्थितियां देखी, अनाज नहीं है, जलेबी खिलानी है बच्चों को, आटा भी नहीं है, अरे खिलाने का भोजन ही नहीं है तो जलेबी की बात ही क्या है। लेकिन बाबा का चेहरा निश्चिंत, खिलाने वाला चाहेगा तो खिलाएगा ना, कितनी बड़ी बात है, हम उसी की तो बेटियां हैं, है ना। तो हर हाल में बातें कम नहीं है, हम भी समझते अंतिम समय में चल रहे हैं तो हिसाब किताब अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन किसी भी हालत में शरीर जो भी आप संकल्प करेंगे, चाहे स्वयं के बारे में, साथी के बारे में, सेवा के बारे में, जो भी आपकी चाहना है, चाहना के विपरीत भी जले चाहे हो जाए, लेकिन मेरी अवस्था, मेरी स्थिति, मेरा स्माइल, मेरा खुशहाल चेहरा वो सदैव रहे, है ना। उसके लिए मैं हमेशा जो बात याद रखती हूँ, जब से बाबा ने बोला, मैंने जब ध्यान से पढ़ा, कई बार पढ़ते हैं ना, पर कई बार क्लिक हो जाता है, तो वो क्लिक हुआ जब बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों से, वतन से बच्चों के चेहरे देखता है। तो मुझे हमेशा आता कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे हमेशा खुश रहना है। हम अपने स्टूडेंट के लिए भी तो खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, चाहे अंदर कुछ गड़बड़ हो भी जाए, लेकिन अगर उसी समय स्टूडेंट आ जाए, उसमें भी VIP स्टूडेंट आए, तो कितने प्यार से हम मिलते हैं, और जैसे कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे कितने प्यार से मिलते हैं ना, प्रैक्टिकल है। तो VIP के लिए स्माइल आ सकती है चेहरे पर, फोटो के लिए स्माइल आ सकती है चेहरे पर, तो बाप के लिए नहीं आ सकती, आ सकती है ना। तो बाबा के लिए मुझे हर हाल में खुशहाल रहना है, चाहे कोई भी बात क्यों ना आए। तो आप अभी, हम 5 मिनट आप सब, है ना, पहले जस्ट लक्ष्य भले बड़ा बड़ा ही लिख दो, एक बार साथ में संगठन में बैठे हैं तो उस पावर से, है ना, लिख भी लेंगे, और फिर 3 दिन प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के लिए हमने बताया था अंतर्मुखता, अंतर्मुखी होकर बहुत गहरा चिंतन करें और बाबा से पूछे कि इसको प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर उसमें एकाग्रता बढ़ाएं और दृढ़ता, बार बार उस बात का चिंतन करें कि मुझे ये करना है, और प्रैक्टिकल उसी समय से करना आरंभ कर देना, जैसे मैंने थैंक यू अप्रिशिएट करना, गुड विशेज देना, ये सब उसी समय अभी चालू कर ही दिया, तो उससे हमको ना कोई मुहूर्त नहीं है उसके लिए कि कब चालू करेंगे, पर कर लो, भले आज 5% हुआ, कल 10% होगा, 5% से थोड़ा तो बढ़ेगा, तो शुरू करेंगे तो कुछ हम कर पाएंगे। तो 5 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, भले व्हाइट लाइट ही होंगी, लेकिन हम सब लिखेंगे स्वयं के शरीर के लिए क्या लक्ष्य है, हेल्थ के लिए, शरीर माना हेल्थ, एक एक मिनट देंगे तो आराम से आप लिख पाएंगे। साथियों के बारे में भी लिखेंगे कि मेरे जो भी साथी है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, जो आप करना चाहते हैं उनके लिए और नहीं कर पाते हैं कोई अपनी ही कमी के कारण, तो वो आप क्या चाहते हो आपके तरफ से, उनसे क्या चाहना है वो नहीं है, मैं अपने आप में क्या करना चाहूंगी उनके लिए, चाहे छोटों के लिए, चाहे बड़ों के लिए, तीसरा सेवा के प्रति, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, कई बार कई स्टूडेंट्स नाराज होकर चले जाते हैं, तो आपको मन में आता है कई बार कि हम उनको कॉल करें पूछें, लेकिन कोई कारण सर रह जाता है, मना ऐसी कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स के प्रति है, सेवा के प्रति है, कुछ सेवा में करने का संकल्प है, या एक छोटी सी बात हो कि मुझे सेवा में कभी ना नहीं बोलना है, है ना, इच्छा होती है पर कई बार होता है ना कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे हाँ बोलूं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कभी भी ना नहीं कहना है। बाबा ने एग्जाम्पल सहित किया कि अगर मान लो कोई कोर्स करने आ गया तो हम कहते नहीं अभी नहीं, हम आपको दो दिन के बाद कराएंगे, तो बाबा ने उसमें कहा था कि ना नहीं बोलना, जब वो आया है तभी उसकी जो इच्छा तीव्रता से जागृत हुई है, हम उसको दो दिन के बाद बुलाएंगे तो वो फिर नहीं भी आ सकता है। तो कहता उस समय तो वो जिस चाहना से आया उस समय उसको बोल दो, भले आपको नहीं भी आता है लेकिन एक बार हाँ बोल दो। तो ये भी मैं ना एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अपने तरफ से हम ये छोटे छोटे लक्ष्य के चलो कभी ना नहीं बोलेंगे चाहे कैसा भी हो। बिल्कुल हाँ, बाबा ने कहा था कि उसके भाग्य को लकीर लगा दी आपने, कहते हम तो सो रहे थे अभी सोने के टाइम, कहाँ कोई आ गया, है ना, उसको बोलेंगे कि अभी नहीं आप दो घंटे के बाद, दो दिन तो दूर की बात है, दो घंटे के बाद आओ तब भी है ना लकीर लग जाएगी, वो दो घंटे में कब उसका मन फिर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसी कोई भी बात जो हम चाहते हैं करना, करते भी हैं, थोड़ा और स्ट्रांगली भी करें, सेवा में ही जीवन है हमारा। ओके, तो एक बात ना, सबने जो लिखा, लिखने के बाद ऐसे हल्कापन किसको लग रहा है कि हाँ बस इतना करना है थोड़ा बहुत, है ना, अभी थोड़ा प्लानिंग ही करना है बाकी कुछ नहीं है, मतलब एक ये लिखने से लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है कि बस हमको इतना करना है, अभी हमारी सारी एनर्जी सारे संकल्प सारा समय कहाँ लगेगा, है ना, अभी इस दिशा की ओर लगेगा। तो क्लैरिटी भी बहुत, क्योंकि इतना हम भी सेवा में इतने व्यस्त हैं कि टाइम नहीं मिलता ये सब सोचने का, तो पट्टी हमको मौका देती है, सोचते हैं प्लान करते हैं और फिर वो डायरेक्शन जब पकड़ लेते हैं ना फिर तो गाड़ी है ना मस्त चलती है, पर अगर पता नहीं होता किस रास्ते चलना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है या कन्फ्यूजन लगता है। तो बहुत सुंदर पूरी भट्टी डिजाइन हुई है ना बड़ों की प्रेरणा से,